स्वागत है आपका दिन भर में। आज है 30 अप्रैल दिन रविवार और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। राष्ट्रपति की कुर्सी पर 100 दिन पूरे होने पर ट्रंप ने परंपरा तोड़ पेंसिल्वेनिया में की रैली, मीडिया पर साधा निशाना।
मीडिया आउटलेट्स लाइक CNN एंड MSNBC आर फेक न्यूज।
मन की बात में पीएम मोदी ने कहा, देश का हर नागरिक है खास। साप्ताहिक पेशकश संग संग गुनगुनाओगे में आज चर्चा गुजरे जमाने के मशहूर संगीतकार सी रामचंद्र की। होंगी खेल की खबरें भी, लेकिन पहले सुनिए BBC समाचार विस्तार से।
BBC समाचार संदीप सोनी से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना 100 दिन का कार्यकाल पूरा होने के मौके पर मीडिया को आड़े हाथों लिया है। पेंसिल्वेनिया में आयोजित रैली में अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने जोर देकर कहा कि वे हर दिन अपने चुनावी वादों पर अमल कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि जो मीडिया उनके 100 दिन की विफलता की बात कर रहा है, उसे अपना रिकॉर्ड देखना चाहिए। ट्रंप ने अपनी आलोचना को फर्जी खबर बताते हुए कहा कि व्हाइट हाउस में पत्रकारों के साथ सालाना रात्रि भोज करने के बदले उन्हें यह समय अपने समर्थकों के साथ बिताना ज़्यादा अच्छा लगता है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि इराक में अल्पसंख्यक यजीदी समुदाय के 36 लोगों को छुड़ाया गया है, जिन्हें इस्लामिक स्टेट के चरमपंथियों ने गुलाम बनाकर रखा था। इस समूह में स्त्री, पुरुष और बच्चे भी शामिल हैं, जिन्हें लगभग 3 साल तक बंधक बनाकर रखा गया। इन 36 यजीदियों को कहां बंधक बनाकर रखा गया और उन्हें किस तरह छुड़ाया गया, इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों ने साल 2014 में उत्तरी इराक में कई यजीदियों की हत्या कर दी थी और उन्हें बंधक बना लिया था। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि लगभग 1500 महिलाएं और लड़कियां अभी भी चरमपंथियों के चंगुल में हैं। पोप फ्रांसिस ने उत्तर कोरिया के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर अमेरिका के साथ जारी तनाव को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता का आह्वान किया है। कूटनीतिक तरीकों से समाधान तलाशने में विफलता के लिए अमेरिका की आलोचना करते हुए पोप फ्रांसिस ने कहा, उत्तर कोरिया की इन मिसाइलों के बारे में साल भर से बात हो रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि मामला अब बहुत आगे बढ़ चुका है। मैं हमेशा कूटनीतिक तरीकों से समाधान की अपील करता हूं, क्योंकि युद्ध मानवता के एक बड़े हिस्से को मार देता है। मानवता ऐसे किसी युद्ध को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये थे पोप फ्रांसिस के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। स्विस मशीन के नाम से मशहूर स्विट्जरलैंड के जाने माने पर्वतारोही उली स्टेक की एवरेस्ट पर चढ़ने के दौरान मौत हो गई है। वो इससे पहले 2 बार एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के चढ़ने में कामयाब हुए थे। स्टेक इस बार एक नए रास्ते से एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। साल 2011 में BBC को दिए एक साक्षात्कार में उन्होंने बताया था, पहाड़ों पर चढ़ना मेरा जुनून है। इसकी शुरुआत 20 साल से भी पहले तब हुई जब मैं लड़का था। मैं पहाड़ों पर तेजी से चढ़ता था ताकि घर जल्दी लौटकर अपने परिवार के साथ लंच और डिनर कर सकूं। ये थे स्विट्जरलैंड के जाने माने पर्वतारोही उली स्टेक के शब्द। लेकिन तीसरी बार एवरेस्ट फतह करने का उनका सपना हमेशा के लिए अधूरा रह गया। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। सीरिया से खबरें मिल रही हैं कि अमेरिका समर्थित लड़ाकों ने इस्लामिक स्टेट के खिलाफ तबका शहर पर नियंत्रण के लिए अपनी स्थिति पहले से मजबूत कर ली है। कुर्द और अरब लड़ाकों से मिलकर बनी सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स का कहना है कि उन्होंने सीरिया के 6 और जिलों को इस्लामिक स्टेट से मुक्त करा लिया है। अमरीका के नेतृत्व वाली गठबंधन सेना जमीनी और हवाई हमलों के जरिए उनकी मदद कर रही है। तबका शहर रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस्लामिक स्टेट के मुख्य गढ़ रक्का से उसकी दूरी केवल 50 किलोमीटर है। ईरान के टेलीविजन नेटवर्क जैम टीवी के संस्थापक और चेयरमैन सईद करीमियन की तुर्की के शहर इस्तांबुल में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। नकाबपोश बंदूकधारियों ने उन्हें तब निशाना बनाया जब वो अपने एक बिजनेस पार्टनर के साथ कार में सवार थे और खुद कार चला रहे थे। हमले में दोनों की मौत हो गई और हमलावर फरार हो गए। BBC समाचार।
आप सुन रहे हैं दिनभर कार्यक्रम रेडियो के साथ साथ bbchindi.com मोबाइल और बीबीसी हिंदी के फेसबुक पन्ने पर लाइव और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभालने के बाद 100 दिन का कार्यकाल पूरा कर लिया है। परंपरा रही है कि नए राष्ट्रपति के 100 दिन के कार्यकाल की पहले के राष्ट्रपतियों के कार्यकाल से तुलना की जाती है। डोनाल्ड ट्रंप अपने वक्तव्यों के कारण चुनाव से पहले और अपनी नीतियों के कारण चुनाव के बाद से लगातार चर्चा में रहे हैं, इसलिए दुनिया भर की निगाहें उनके 100 दिन के कामकाज पर थीं और पत्रकार व्हाइट हाउस में उनसे मिलने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन उन्होंने वॉशिंगटन में पत्रकारों के साथ सालाना डिनर की बजाय पेंसिल्वेनिया में समर्थकों के बीच रैली करने का फैसला किया और वहां मीडिया की जमकर आलोचना की। न्यूयॉर्क से एक रिपोर्ट के साथ सलीम रिजवी।
अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर राष्ट्रपति पद के चुनाव में अहम किरदार निभाने वाले पेंसिल्वेनिया प्रांत में समर्थकों की बड़ी रैली को संबोधित किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ट्रंप ने मीडिया को एक बार फिर खरी खोटी सुनाई और अपनी आलोचना करने वाली खबरों को झूठी खबरें बताया।
मीडिया आउटलेट्स लाइक CNN एंड MSNBC आर फेक न्यूज बट दे आर ट्रैप्ड एट द डिनर Which will be very, very boring.
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, वॉशिंगटन में हो रहे संवाददाता डिनर में हॉलीवुड कलाकारों का एक बड़ा तबका और वॉशिंगटन मीडिया खुद को सांत्वना दे रहे होंगे, ये बहुत उबाऊ होगा। पेंसिल्वेनिया प्रांत जहां की अर्थव्यवस्था खनन पर ज्यादा निर्भर है, वहां रैली करते हुए ट्रंप ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति चुने जाने के बाद से हर दिन काम किया है। उन्होंने दावा किया कि वो कई क्षेत्रों में नौकरियों को वापस ले आए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्होंने कोयले की खानों के खिलाफ पिछले प्रशासन की जंग को खत्म कर दिया है, यानी अब वो कोयले की खानों से जुड़ी नौकरियों को वापस ले आएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बराक ओबामा के प्रशासन ने उन्हें सब कुछ खराब करके दिया है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि बड़ी लड़ाई होना बाकी है और वो हर मामले में जीत हासिल करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने समर्थकों से कहा कि वो एक के बाद एक अपने चुनावी वादों को पूरा करने में लगे हैं। उन्होंने पिछले करीब 60 वर्षों में किसी राष्ट्रपति द्वारा अब तक सबसे ज्यादा संसदीय बिल को मंजूर करने के रिकॉर्ड का भी जिक्र किया।
I've signed 29 new bills, a record not surpassed since the Truman administration.
रैली में बोलते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने जलवायु परिवर्तन में पेरिस समझौते के प्रति अमरीका के वादे की अपनी पूर्व आलोचना को दोहराया। उनकी रैली से कुछ घंटे पहले अमरीका के कई शहरों में ट्रंप की नीतियों, खासकर जलवायु परिवर्तन को लेकर ट्रंप प्रशासन के रवैये के खिलाफ हजारों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किए। पेंसिल्वेनिया में जहां एक ओर ट्रंप रैली कर रहे थे, वहीं वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस कवर करने वाले पत्रकारों की डिनर पार्टी भी जारी थी। इस कार्यक्रम को वॉशिंगटन का एक बहुत अहम और बड़ा आयोजन माना जाता है और इसमें आम तौर पर अमरीकी राष्ट्रपति भी शामिल रहते हैं, लेकिन पिछले करीब 3 दशक में पहली बार मौजूदा अमरीकी राष्ट्रपति ने इस कार्यक्रम में शिरकत नहीं की। और रवायती अंदाज में कार्यक्रम में एक भारतीय मूल के अमरीकी कॉमेडियन हसन मिनाज ने राष्ट्रपति ट्रंप को निशाना बनाया।
You know Donald Trump doesn't drink, right? Does not touch alcohol, which is oddly respectable. But think about that. That means every statement, every interview, every tweet completely sober. How is that possible?
इस कार्यक्रम में बोलते हुए अमेरिका के एक नामी ग्रामी पत्रकार बॉब वुडवर्ड ने डोनाल्ड ट्रंप को नसीहत भी दे डाली कि मीडिया झूठी खबर नहीं है और वो ऐसा कहना बंद कर दें।
मिस्टर प्रेसिडेंट, द मीडिया इज नॉट फेक न्यूज। लेट्स टेक दैट ऑफ द टेबल।
डोनाल्ड ट्रंप ये शिकायत करते रहे हैं कि अधिकतर अमरीकी मीडिया उनके चुनावी दौर के समय से उनके बारे में कथित तौर पर झूठी और मनगढ़ंत खबरें चलाता रहता है। सलीम रिजवी, न्यूयॉर्क।
दिन भर शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,510, 9,460, 11,795 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज़ पर।
अमेरिका के बाद अब भारत का रुख करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो पर अपने मासिक मन की बात के 31वें संस्करण में कहा कि देश का हर नागरिक खास है। VIP के बजाय उन्होंने एक नया शब्द दिया, EPI यानी एवरी पर्सन इज इम्पॉर्टेंट। विकास त्रिवेदी हमारे सहयोगी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आज दिन भर की खबरों पर उनकी नजर रही है। विकास, सबसे पहले ये बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में साउथ एशिया सैटेलाइट को लेकर क्या कुछ कहा है।
अमरीश, पीएम मोदी ने मन की बात में दक्षिण एशिया सैटेलाइट के प्रक्षेपण का जिक्र किया। भारत 5 मई को इस सैटेलाइट का प्रक्षेपण करने जा रहा है। 2230 किलो की यह सैटेलाइट 3 साल में बनकर तैयार हुई है। करीब 235 करोड़ रुपए की लागत से बनी यह सैटेलाइट दूरसंचार और आपदा प्रबंधन से संबंधित क्षेत्रों में सार्क देशों के बीच मददगार रहेगी। इसलिए पीएम मोदी ने इस प्रक्षेपण को पड़ोसी मुल्कों से दोस्ती बढ़ाने की ओर कदम माना। मोदी ने कहा कि वो चाहते हैं हमारे साथ साथ पड़ोसी देशों का भी विकास हो। प्रधानमंत्री की बातों से लगता है कि वो सबका साथ सबका विकास वाला नारा सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रखना चाहते, यानी अंतरिक्ष में भी सबका साथ सबका विकास। मोदी ने इस सैटेलाइट को लॉन्च करने की बात 2014 में सार्क सम्मेलन के दौरान कही थी। जाहिर है कि यह सैटेलाइट का फायदा सार्क देशों को होगा, लेकिन इसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है क्योंकि पाकिस्तान ने सैटेलाइट कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया था।
विकास, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यप एर्दोगान आज 2 दिन की यात्रा पर भारत आ रहे हैं। उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होनी है। क्या क्या एजेंडे पर है, किन किन मसलों पर बात हो सकती है?
प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात होनी है और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से भी मुलाकात होनी है। 2 दिन का दौरा रहेगा। दोनों समकक्षों के बीच आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को लेकर बातचीत की संभावनाएं हैं। वहीं एर्दोगान के मोदी से मुलाकात के दौरान सीरियाई संकट और न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप यानी परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में भारत की सदस्यता को लेकर बात हो सकती है। तुर्की का इस मामले में अब तक रुख चीन से पलट रहा है, भारत के पक्ष में ही रहा है। दोनों देशों के बीच आंतरिक सुरक्षा चरमपंथियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर भी बात हो सकती है। तुर्की और भारत के बीच करीब 4 लाख करोड़ का व्यापार होता है और हाल ही में तुर्की में जो जनमत संग्रह हुआ था वो एर्दोगान के ही अगुवाई में हुआ था। तो ऐसे में एर्दोगान एक शक्तिशाली नेता के तौर पर बन के उभरे हैं, तो भारत में जो आए हैं तो उनसे कुछ उम्मीदें जताई जा रही हैं कि कुछ अच्छा हो सकता है।
बहुत बहुत शुक्रिया विकास इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में सेना के एक रिटायर्ड कर्नल के घर पर रेवेन्यू इंटेलिजेंस विभाग के छापे की कार्रवाई में कई जानवरों के अंग और बड़े पैमाने पर हथियार मिलने की खबर है। छापे के दौरान बड़ी संख्या में नकदी भी बरामद हुई है। पूरी जानकारी के साथ लखनऊ से समीर आत्मज मिश्र।
सेना से रिटायर्ड कर्नल देवेंद्र कुमार के घर DRI की टीम आय से ज्यादा प्रॉपर्टी के मामले की जाँच करने आई थी, लेकिन जब छापा मारा गया तो जो चीजें मिली उन्हें देख कर लोग हक्का बक्का रह गए। घर के भीतर बनाए गए अस्थायी गोदामों में तेंदुए, हिरण और सांभर की खाल और सींगों के अलावा बड़ी संख्या में हथियार भी बरामद हुए। DRI के सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर मनोज कुमार ने बताया,
हमने अपने स्पेसिफिक सूचना के आधार पे प्रशांत विष्णु जी के घर के रेजिडेंस का सर्च किया। वहाँ पे हमें सूचना थी कि इलीगली इम्पोर्टेड फायर आर्म्स है वहाँ, वो हमें यहाँ रिकवर भी हुए हैं। कुछ के डॉक्यूमेंट्स है काफी है, 1500 राइफल्स है, 9 पिस्टल्स हैं, कुछ राइफल्स हैं, कार्ट्रिज हैं ढेर सारे, दैट वो डिटेल है। और फिर हमें इस वाइल्ड लाइफ की वो मिली, सींग है ब्लैक बक के, सांबर के और लियोपर्ड के भी स्किन मिले हैं।
छापे के दौरान घर के अंदर फ्रीज कंटेनिंग में 45 पैकेट मिले जिनमें कई जानवरों का मांस था। इन पैकेटों का वजन 1 क्विंटल से ज्यादा बताया जा रहा है। रिटायर्ड कर्नल देवेंद्र कुमार नेशनल शूटर भी हैं। मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जय रविंद्र गौड़ का कहना है कि पुलिस को इस तरह की जानकारी पहले कभी नहीं थी और जांच के बाद ही पता चलेगा कि बरामद चीजों में कितनी अवैध है।
हथियार तो पहले से कहा ही है और उनके पास ये जो रिनोन शॉट जो है वो 50,000 तक का कैटरेजेस भी अपने पास रख सकते हैं, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर सही है, तो हो सकता है ये अब आगे मिलेगा तो ये एक्सप्लेन कि भाई ये क्यों ऐसे किया है। वो तो DRI का ही है सारी चीज। देखिए इलीगल चीजें जो है वो तो एक तो वन विभाग वाले तय करेंगे या फिर DRI वाले बताएंगे। फिलहाल तो वो लोग पूरा अपना जांच पड़ताल चल रहे हैं, जब जांच पड़ताल हो जाएगा तब DRI वाले बता देंगे।
जानवरों की खाले मिलने के बाद इंटेलिजेंस विभाग ने वन विभाग के अधिकारियों को भी बुला लिया और छापेमारी के दौरान मिली चीजों को फिलहाल जब्त कर लिया गया है। फिलहाल इनकी जांच की जा रही है और रिटायर्ड कर्नल समेत एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
BBC हिंदी।
और अब वक्त है हमारी खास पेशकश का, संग संग गुनगुनाओगे। हिंदी सिनेमा की गौरवशाली संगीत यात्रा को पिछले 5 हफ्तों से हम संगीत विभूतियों के जरिए आपके सामने लाते रहे हैं। उसी कड़ी में आज सुनिए गुजरे जमाने के मशहूर संगीतकार सी रामचंद्र को समर्पित पेशकश, जिन्हें पाश्चात्य शैली की धुनों का जादूगर कहा जाता था। सी रामचंद्र ने जहां आना, मेरी जान, संडे के संडे जैसे पाश्चात्य शैली के गीत कंपोज किए, वहीं लता जी की आवाज़ में ए मेरे वतन के लोगों जैसी कालजयी संगीत रचना कर नेहरू जी की आंखों को नम कर दिया था। सी रामचंद्र की संगीत यात्रा आप तक पहुंचा रहे हैं संगीत समीक्षक यतीन्द्र मिश्र।
संग संग गुनगुनाओगे, कला समीक्षक यतीन्द्र मिश्र के साथ।
अनारकली का ये गाना सुनते हुए सी रामचंद्र सहज ही मन में उभरते हैं। एक ऐसा संगीत चितेरा जिसे 50 के दशक में ये महारत हासिल थी कि कैसे वह अपने संगीत को दूसरे संगीतकारों से बिल्कुल अलग और पाश्चात धुनों से समेट कर बनाता था। अनारकली के जिस गाने को आपने सुना है उसके लिए इंग्लैंड के अखबारों में ये प्रकाशित हुआ था, शी सिंग्स लाइक एन एंजल। लता मंगेशकर के लिए ये जब बात कही गई थी तो उस समय उनकी देवदूत सी लगती आवाज के लिए सी रामचंद्र का हाथ माना जाता था, जिसके लिए आज भी ये कहा जाता है कि सर्वाधिक मधुरतम संगीत रचने में वो भी लता मंगेशकर के लिए सी रामचंद्र ही अग्रणी थे। ऐसे कुछ गानों से हम इस बात को बखूबी समझ सकते हैं।
आँखों में समा जाओ, इस दिल में रहा करना, तारों में हंसा करना, फूलों में खिला करना, आँखों में समा जाओ, इस दिल में रहा करना।
गीतों से अलग ये देखना भी बहुत गौर करने की बात है कि सी रामचंद्र ने अपनी धुनों को बहुत सहज ढंग की रूमानियत पर विकसित किया था। ऐसी धुनें जिनमें पाश्चात्य रंग और भारतीयता का एक अद्भुत सम्मिश्रण देखा जा सकता है। ऐसी धुनें जिनको उस जमाने के युवा गुनगुनाना पसंद करते थे।
I love you. Yeah, I love you.
In Aminadika, Dai Dominica, Makanakanaka, Chika Pikarika. In Aminadika, Dika, Dai Dominica, Makanaka, Makanaka, Chika Pikarola, Rika, Rampam Poch, Rampam Poch.
इन गीतों के साथ साथ कुछ और गीत भी याद आते हैं। अलबेला का शाम ढले खिड़की तले तुम सीटी बजाना छोड़ दो, और भोली सूरत दिल के खोटे नाम बड़ा और दर्शन छोटे। सी रामचंद्र के संगीत की सबसे खूबसूरत बात यही रही है कि एक तरफ वे शास्त्रीय संगीत में पगी हुई रचनाएं कुछ मेलोडियस ढंग से व्यक्त करते थे तो दूसरे समय अंग्रेजी धुनों को बिल्कुल भारतीय बनाकर परोस देते थे। उनके यहाँ संगीत में जो लय और जो रिदम का काम है वो अलग से रेखांकित करने वाला है। इस लिहाज से उनके समय के समकालीन संगीतकारों मसलन अनिल विश्वास, आरसी बोराल, गुलाम हैदर, हुसलाल भगतराम, खेमचंद प्रकाश, सज्जाद हुसैन, बुलो सिरानी, श्याम सुंदर और नौशाद हर तरह से एक पाए पे खड़े हुए संगीतकार हैं। लेकिन जब बात सी रामचंद्र की होती है तो वे थोड़े से रोमानियत से भरे हुए, थोड़ा उल्लास और उत्सव का परिवेश रचते हुए अपनी छाप छोड़ने में अलग नजर आते हैं। इसके उदाहरण के लिए नास्तिक फिल्म का वो गरबा सुना जा सकता है जिसे शायद फिल्म संगीत का संभवतः पहला गरबा भी माना जाता है।
गाना बजाए बंसरी और ग्वाले बजाए मंजीर, वो गोपियां नाचे झुमक झूम।
गाना बजाए बंसरी और ग्वाले बजाए मंजीर, वो
श्री रामचंद्र की महत्वपूर्ण फिल्मों की लिस्ट बहुत लंबी है। फिर भी 7-8 फिल्में जरूर ऐसी गिनी जा सकती हैं जिनमें उनका शाहकार अपने चरम पर है। इनमें परछाई, अलबेला, शिनशिनाकी बुबला बू, अनारकली, नास्तिक, आज़ाद, यास्मीन और नवरंग को याद किया जा सकता है। कुछ गीतों के बहाने इस सदाबहार संगीतमय यात्रा को हम इस लिहाज से भी परख सकते हैं कि कैसे सी रामचंद्र ने वहाँ तमाम दर्दीली धुनें बनाई और एक से बढ़कर एक सुंदर धुनें वे बन सके।
तुम क्या जानो तुम्हारी याद में हम कितना रोए, रैन गुजारे तारे गिन गिन चैन से जब तुम सोए, हम कितना रोए। मुझ पे इल्जाम बेवफाई है, मुझ पे इल्जाम बेवफाई है, मोहब्बत तेरी दुहाई है। मुझ पे इल्जाम बेवफाई है, आ जा मेरी किस्मत के खरीदार, अब तो आ जा तो आ जा मेरी किस्मत के खरीदार, अब तो आ जा। नीला मुहर
मोहब्बत ही न जो समझे वो ज़ालिम प्यार क्या जाने, निकलती दिल के तारों से जो है झनकार क्या जाने।
श्री रामचंद्र के लिए एक बात ये भी बड़ी मशहूर रही है कि उन्होंने उस्ताद बड़े गुलाम अली खां की कुछ ठुमरियों का सिनेमाई संगीत में रूपांतरण किया और ऐसी ठुमरियों को उन्होंने अपनी पसंदीदा गायिका, महान पार्श्व गायिका लता मंगेशकर से गवाया। ऐसे एक गीत को हम यहाँ सुन सकते हैं जो देवता फिल्म में उन्होंने लिया, कैसे आऊं जमुना के तीर। के अलावा जिन दो अन्य ठुमरियों पर उन्होंने खूबसूरती से अपना संगीत रचा है उनमें पहली झलक का ना मारो नजरिया के बान, जिसे तोरी तिरछी नजरिया के बान पर विकसित किया गया था, और दूसरा बहुरानी फिल्म का मशहूर गीत बलमा अनाड़ी मन भाए। ये हमने पहले ही चर्चा की है कि सी रामचंद्र की धुनें आसानी से हर एक की जुबान पर चढ़ने वाली होती थी। उनमें फिर उन गीतों का मेयार ऐसा बनता था कि हर दूसरा व्यक्ति अपने जमाने में उन गीतों को गुनगुनाना पसंद करता था। ऐसे एक गीत को सुनते हुए हम उनकी उस परंपरा को भी रेखांकित कर सकते हैं कि जिस जमाने में नौशाद शास्त्रीय संगीत के माध्यम से अपनी बात कर रहे थे या आरसी बोराल ने बिल्कुल ऑर्केस्ट्रेशन का एक नया पक्ष उभारा था, सी रामचंद्र इन दोनों के बीच कहीं एक आसानी से जुड़ता हुआ पुल बना रहे थे।
भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे, दर्शन छोटे। भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे, दर्शन छोटे।
ये सी रामचंद्र के ही सौभाग्य के खाते में दर्ज है कि कैसे उन्होंने हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखों में आंसू ला दिए थे जब उन्होंने अपनी कंपोज की हुई एक धुन पर लता मंगेशकर से कुछ ऐसा देशभक्ति का गीत गवाया। मिठास की मौलिक इबारत गढ़ने में संलग्न ये चितेरा सी रामचंद्र एक ऐसा फनकार हुआ है जिसने भारतीय संगीत को और खासकर हिंदी सिनेमा के संगीत को सबसे सुंदर रूमानियत भरे गाने दिए हैं। चलते चलते हम उनकी महान परंपरा से एक ऐसे गीत को चुरा कर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं जिसे आज भी लव डुएट्स में एक महान स्थान हासिल है और जिसमें उनकी पसंदीदा गायिका लता मंगेशकर शामिल नहीं है। जी हाँ, मैं महेंद्र कपूर और आशा भोसले द्वारा गाए हुए उस अमर गीत को याद करना चाहता हूँ जिसने सी रामचंद्र को एक अलग सा नया मुहावरा दिया था।
आधा है चंद्रमा रात आधी, आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी।
संगीत समीक्षक यतीन्द्र मिश्र पेश कर रहे थे संग संग गुनगुनाओगे। इस श्रृंखला के संयोजनकर्ता हैं मोहनलाल शर्मा। और अब खेल समाचारों का वक्त हो चला है। स्टूडियो में आ गए हैं, आ चुके हैं हमारे साथ आदेश कुमार गुप्त। आदेश, आईपीएल के पहले मैच में तो किंग्स इलेवन पंजाब ने दिल्ली डेयर डेविल्स को 10 विकेट से बुरी तरह हरा दिया। कहाँ गलती हो गई डेयर डेविल्स से?
जी देखिए, ऐसा लगता है दिल्ली डेयर डेविल्स के जो बल्लेबाज हैं वो विकेट के मिजाज को पढ़ ही नहीं पाए। आप देखिए, यही वजह थी कि संदीप शर्मा ने केवल 20 रन देकर 4 विकेट लिए और पंजाब के कप्तान ग्लेन मैक्सवेल को शायद विकेट का सही अंदाज़ा था जिसकी वजह से उन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। लेकिन इतनी विकेट ख़राब भी नहीं थी और दिल्ली के बल्लेबाज लगातार एक के बाद एक विकेट गंवाते रहे। आप देखिए, अमरीश जी 17.1 ओवर में ही केवल 67 रन पर दिल्ली का पुलिंदा बंध गया। और उसके बाद ये लक्ष्य इतना आसान था कि मार्टिन गप्टिल और हाशिम आमला को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई और जिसकी वजह से 10 विकेट से ये मुकाबला उन्होंने अपने नाम किया।
समय की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया आदेश कुमार गुप्ता आपका खेल समाचारों के लिए। कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना 100 दिन का कार्यकाल पूरा होने के मौके पर मीडिया को आड़े हाथों लिया है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि इराक में अल्पसंख्यक यजीदी समुदाय के 36 लोगों को छुड़ाया गया है जिन्हें इस्लामिक स्टेट के चरमपंथियों ने गुलाम बनाकर रखा था। पोप फ्रांसिस ने उत्तर कोरिया के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर अमेरिका के साथ जारी तनाव को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता का आह्वान किया है। स्विस मशीन के नाम से मशहूर स्विट्जरलैंड के जाने माने पर्वतारोही उली स्टेक की एवरेस्ट पर चढ़ने के दौरान मौत हो गई है। वो इससे पहले 2 बार एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के चढ़ने के कामयाब हुए थे। सीरिया से खबरें मिल रही हैं कि अमेरिका समर्थित लड़ाकों ने इस्लामिक स्टेट के खिलाफ तबका शहर पर नियंत्रण के लिए अपनी स्थिति पहले से मजबूत कर ली है। बीबीसी समाचार।
तो इसी के साथ दिनभर की यह सभा यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में होगी। कार्यक्रम के दौरान तकनीकी सहयोग दिया शाकिर आलम ने। तो अब अपने सभी सहयोगियों के साथ अमरेश द्विवेदी को दीजिए अनुमति और देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए bbchindi.com के साथ। नमस्कार।